अल्लाह हु अकबर कबीरा। आगे चलेंगे, रुकू नंबर 4 है, 20 से 26 आयात। बनी इसराइल की काहली और हीला साजी, यानी कौमें जब सुस्त हो जाती हैं तो वो क्या रवैये अख्तियार करती हैं। वह इस काल मूसा अली कौम ही या कौम इस्कुरु नेमतुल्लाहि अलैकुम, और जब मूसा अली सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह ताला के इस एहसान का जिक्र करो कि इसने तुम में से पैगंबर बनाए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो दिया जो तमाम आलम में किसी को नहीं दिया। ऐ मेरी कौम वालो, इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगरदानी ना करो कि फिर नुकसान में जा पड़ो। क्या ये पुकार सिर्फ बनी इसराइल की जुबान से मूसा के नाते से थी, या आज भी उम्मत मुस्लिम आपको मुझे यही पैगाम दे रहा है? आप देखिए, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। आज के दौर पे भी देखें तो उम्मत मुस्लिमा को भी यही पैगाम है। अल्लाह तो पहले से वादे दे रहा है कि मैं तुम्हें फतह और कामयाबियां देता हूँ, लेकिन वही बात है कि कुरान इज अ ब्रेव बुक इन कावर्ड्स हैंड्स। कुरान एक बहादुर किताब है बुजदिलों के हाथ में। अल्लाह हमें ईमानदार, ईमान की ताकत कम होती है तो बंदा बुजदिल हो जाता है। जवाब सुन लीजिए, ऐसा ही हाल उस दौर में बनी इसराइल का था, तभी तो अल्लाह ने उनको हटा के हमें पेश किया। क्या कहा? नबी का सवाल क्या था और कौम का जवाब सुनिए। उन्होंने जवाब दिया है, मूसा वहां तो बड़े जोरावर सरकश लोग हैं। है कहानी आज की, मुसलमान क्या सोच रहा है? यही नहीं सोचता। और जब तक वो वहां से निकल ना जाए, हम तो हरगिज वहां ना जाएंगे। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाए तो हम खुशी खुशी जाएंगे झंडा पकड़ कर फतह कर। लोग यही चाहते हैं, दुश्मन खुद चले जाएं फिर हम जाकर अपने नाम का झंडा लगा दें। क्या उम्मते मुस्लिमा पूरी की पूरी कमोबेश इसी रवैये का इजहार नहीं कर रही? सारे नहीं है, कुछ होंगे जिनका तस्करा आगे आ रहा है। दो शख्सों ने जो खुदा तरस लोगों में से थे, जिन पर अल्लाह तला का फजल था, इन दो में से एक कौन थे? यूशे बिन नून, जिनके हाथों पर अल्लाह ने बाद में बैतुल मकदस को फतह कराया। और ये वही थे जब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उस इल्म के सफर में एक शागिर्द के नाते से ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या कहा? कि तुम इनके पास दरवाजे में तो पहुंच जाओ, यानी उठो तो साई, कदम तो उठाओ, पेट का पानी तो हिलाओ, घर बैठे बातें करते रहते हो, जाओ तो साई, दरवाजे पर कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे। और अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। ये है जी इस बारे में ईमान की ताकत। आज 2 बिलियन मुसलमानों में उनके ईमान में वो ताकत नहीं है जो अकेले अबू बकर सिद्दीक में थी, और खालिद बिन वलीद ने जो जौहर दिखाए उनमें थी। जो जंगे वो लड़कर आए थे उसमें तो एक एक बंदे के मुकाबले में हजारों काफिर थे, और आज हम घर बैठे कहते हैं नामुमकिन है, कि हम तो मानते ही नहीं है। एक होता है बंदे को शर्म आती है कि ये काम मैं नहीं कर रहा, एक वो वक्त होता है बंदा कहता है ये काम ही नहीं है। जिसने नहीं मानना होता ना, वो असल में यही हुज्जतें कर रहा होता है कि एक दफा मैंने मान लिया फिर अम्मी ने कहना जाओ करो। आज मुसलमान मानने को ही नहीं तैयार कि ये जिहाद है, हम ये मानते ही नहीं है कि ये भी कोई जुल्म और सितम है। तो सोचने की बात है कि अल्लाह फिर हमारे साथ वो क्यों ना करे जो अल्लाह पिछली ऐसी कौमों के साथ करा। उनकी ती तो 40 साल में पूरी हो गई थी, ये सजा पड़ी थी ना, सहराओं में पड़े रहते, ये ती हो ना फिलर। आज इस उम्मत मुस्लिमा की ती जो है ना, ये सदियों पे मुहित है। 400 साल हो गए हमें ये ती हो ना फिलर थी, एक ही घन चक्कर में पड़े रोटी कपड़े मकान में। अल्लाह ने हमें हमारी ही मार मार दी, और कमाओ, जाओ और घर में लाओ, जाओ और सोफा खरीद के लाओ, जाओ ये भी लाओ, तुम्हारा वो बॉस खराब है, अच्छा वो अब रंग बदल के, जाओ तुम अपने काम करो। बस अब अंत और रब्बो का फकात इला गया नहीं आए थे। हम सुबह हाल से कहते हैं अल्लाह हमें कोई परवाह नहीं, किसी का बच्चा मरे, किसी की गर्दन कटे, कोई भूखे रहे, कोई मट्टी खाए, हमें तो अपनी फिक्र है। हाँ वैसे हम वैसे बड़ा दर्द करते हैं, जरा देखो खबरों में आज क्या है, और बहुत भी करते हैं ना तो खून से लिपटी हुई वीडियोस शेयर करते हैं ताकि दिल और भी सख्त हो जाए, फिर वो खून देखकर भी रोना ना आए। और जुमला सुन लीजिए कौम का, फज़हबन तबरब्बु का फ़क़ातिला। कौम ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, जब तक वो वहां है तब तक हम तो हरगिज़ वहां नहीं जाने वाले, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़ो भिड़ो। हम यहाँ बैठे हैं, हमें फेशियल कराना है, अभी हमारे घर दावत है, अभी हमने जाके थीम मैरिज के लिए कई चीजें खरीदनी है, अभी डेकोरेशन खरीदनी है, हमें तो काम ही बड़े हैं। और अभी तो हमने नमाजें पढ़नी है, अभी तो हमने उम्रे पे जाना है, अभी तो हमने हज करना है, दीन के भी बड़े काम कर रही है उम्मत मुस्लिमा। अल्लाह नहीं खुश होगा मेरे आपके उम्रे से? अल्लाह बिल्कुल खुश नहीं होगा आपके मेरे हज से? तुम कभी देखो तो सही कि तुम्हें सूरत मायदा पैगाम क्या दे रही है। किधर है इस्लाम का निफास, कहाँ है तकमीले शरिया, किसी के कान पे जूं तक न रींगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बेबसी को देखकर दर्द महसूस करके रोइए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इलाही मुझे तो सिवाय अपने और मेरे भाई के किसी और पे कोई इख्तियार नहीं, कोई एक मानने को नहीं दे रहा मूसा की बात, बस तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई कर दे। ये वो वक्त होता है जिधर नबियों को हिजरत का हुक्म मिल जाता है कि छोड़ो फिर, क्योंकि गेहूं भी गुण के साथ पिसता है, तो तुम निकल जाओ, इनको तो अभी मैंने खत्म करना है। अभी इरशाद हुआ और अब जमीन इन पर 40 साल तक हराम कर दी गई है। ये खाना बदोश इधर उधर सरगर्दा फिरते रहेंगे, इसलिए तुम फासिकों के बारे में गमगीन ना होना। यानी नबी के तो दिल में अल्लाह गम भी नहीं बर्दाश्त कर रहा। क्या पता चला ईमान से मुतल्लिक आयत 23, फैजा दखल तुमूहु फैन्नकुम गालिबून वालल्लाहि फतवक्कलु इन कुंतुम मोमिनीन। इसको बड़ा बड़ा करके स्लोगन बना के दुनिया को दिखाइए। ईमान की कसवटी तादाद नहीं मेयार है। हाउ मेनी मुस्लिम यू आर डजंट मैटर, व्हाट इज योर ईमान, ये है ईमान की ताकत। 2 बिलियन हो चाहे 6 बिलियन हो जाओगे, लेकिन नकारे हो, नकम्मे हो, बेकार हो तुम, जब तक तुम्हारा वो ईमान नहीं कि जिसको देखकर दुश्मन भी हिल जाए, तब तक तुम अपने आप को अल्लाह के सामने सुरखरू नहीं समझोगे। तो फेथ इन एक्शन के पॉइंट क्या हैं, कि आजमाइशों में साबित कदम रहना है, नेमतों की नाकदरी नहीं करनी, अमल के मौके पे हीले बहाने नहीं करने। और आगे वो रुकू है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि हसद पहले कत्ल की बुनियाद बना, हाबील और काबील का किस्सा 27:34 है। ये क्यों यहाँ आ गया एकदम, पीछे क्या पढ़ रहे हैं आप, यहूद की हिस्ट्री, वादिय तीम में फिर रहे हैं, जिहाद का इनकार कर रहे हैं, कौम इमालका से नहीं लड़ना, बैतुल मकदस को आजाद नहीं करना, ये बीच में एकदम कत्ल कत्ल क्यों? इस कौम की तो हिस्ट्री कत्लो गारत करी के, इतने प्यास नहीं रोज मुसलमान घरों में और पाकिस्तानी देसी लोगों में और इंडियन में कटते होंगे जितने ये इंसानों को काटते हैं। एक एक दिन में 300-300 नबियों को इन्होंने कत्ल किया, और इनके बारे में रिवायत में आता है कि कत्ल करके जाकर फिर सब्जी प्याज बेचने लग देते थे। इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, वी आर जस्ट डिफेंडिंग आवर सेल्फ, हम तो कुछ नहीं कर रहे, यानी भोले बन के। तो यहाँ अल्लाह सुना रहा है कि तुम्हें पता है इस दुनिया को कत्ल का तोहफा किसने दिया था, उनकी कहानी सुनो। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक, हाबील और काबील दो बेटे आदम के, उनका किस्सा आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का खरा खरा हाल भी इन्हें सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नजर तो कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा कि मैं तुझे मार ही डालूंगा। इसने कहा, अल्लाह तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है। ये जुमला नोट कर लीजिए कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। वो तो मेरे कत्ल के लिए हाथ उठाए, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज अपने हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह ताला परवरदिगार आलम से खौफ खाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुना अपने सर पर रख ले और दोस्तियों में शामिल हो जाए, जालिमों का यही बदला है। बस इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर इमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि इसे वो दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं ऐसा करने से भी क्या गुजरा हो गया हूँ कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देता। फिर तो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। किस बात पे? इस बात पे कि मैंने भाई को कत्ल क्यों किया? नहीं, इस बात पे कि लाज छुपा क्यों नहीं रहा। आज ईवल जीनियस इसको कहते हैं कि गलत चीज पे शर्मिंदगी नहीं है कि गलती की, मैं क्यों इतनी भोली हूँ, मुझसे क्यों झूठ नहीं बोला जाता, ये अंदाज है उस बंदे का। अल्लाह ताला ने उसका किस्सा बयान करके हमें भी अपने अमल पे गौर करने की दावत दी। इस वजह से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो या जमीन में फसाद मचाने वाला हो कत्ल कर डाले, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी एक की जान बचाए, इसने गोया तमाम लोगों को जिंदा कर दिया। और इनके पास हमारे बहुत से रसूल जाहिर दलीलें लेकर आए थे, लेकिन फिर इसके बाद भी इनमें से अक्सर लोग जमीन में जुल्मों से आती और जबरदस्ती ही करने वाले रहे। या आपने देखा डॉक्टरी के पेशे की कितनी तअज़ीम है, जान बचाने वाला, और उसके मुकाबले में कातिल कितना बुरा है जो किसी की जान लेता है। इसको आयते मुहारिबा भी कहते हैं। जो अल्लाह ताला से और इसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते फिरे, इनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, इन्हें जिला वतन कर दिया जाए। ये तो हुई इनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखरत में इनके लिए बड़ा भारी अजाब है। हाँ, जो लोग इससे पहले तौबा कर लें कि तुम इन पर काबू पा लो, तो यकीन मानो कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी बख्शिश और रहमो करम करने वाला है। इस रुकू के साथ तो ये बात लिख लीजिए कि जब कोई कौम मुर्दा कौम बन जाती है तो अल्लाह उसे जिंदा कौम बनाने के लिए गैर मामूली हालात से गुजारता है। और अफसोस के साथ कहूंगी कि आज का मुसलमान बिल्कुल इन्हीं हालात से गुजरा। आपको नहीं लगा ये रुकू आज का था? आज के हालात नहीं लग रहे? अगली बात, इस कत्ल की वजह हसद बनी। मदीना वाले नबी से हसद करके इस्लाम पे ना आए। हमने हसद से बचना है, क्योंकि हसद वो तेजाब है जो उसी बर्तन को खा जाता है जिसमें उसको डाला जाता है, और वो बर्तन आपका मेरा दिल है। हासिद का दिल जख्मी होता है। फिर हाबील काबील के किस्से से कमल का नुक्ता कि अल्लाह का खौफ जुल्म की तरफ बढ़ते हुए हाथ रोक लेता है। यानी उसने कहा कि तुम बुरा कर लो, मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कहा कि अच्छा पीयर प्रेशर में आके फिर मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊं। फिर एक बेगुनाह शख्स का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है, क्योंकि वो हुर्मत की रस्सी खुल गई, यानी उसकी नॉट जो है वो खोल दी, अननॉट कर दिया तो सारे ही दाने गिरेंगे तस्बीह के। किसी की जान बचाना भी गोया के पूरी इंसानियत की जान बचाना है। पता क्या चला कि एक बुराई दूसरी बुराई को आसान कर देती है। फिर चूंकि यहाँ बात हुई थी कि इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिनल मुत्तकीन, तो अपने अमाल की कबूलियत के लिए तकवा मांगना है, अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होने के लिए जुर्म करने से बचना है, और नेकियां करते हुए उसकी कबूलियत की दुआ करते रहना है, दूसरों की नेमतों के हसद से बचना है, गुस्से में आकर इंतकामी इकदामात से बचना है, जुल्म और ज्यादती के कामों में एक दूसरे का साथ नहीं देना। आगे बहुत ही प्यारा रुकू है, तकवा कुर्बते इलाही की बुनियाद। रुकू नंबर 6 है, 35 से 43। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वबतगू इलैहिल वसीला। आपको आपके रब का एक और मोहब्बत भरा पैगाम, क्या कि उसकी तरफ वसीला ढूंढो, वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, फलाह का रास्ता। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और इसका कुर्ब तलाश करो और इसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम्हारा भला हो। यकीन मानो कि कुफार के लिए अगर वो सब कुछ जो जमीन में है बल्कि इसकी मिसल और भी हो, और वो इन सब को कयामत के दिन अजाब के बदले फिदिये में देना चाहे, तो भी नामुमकिन है कि इनका फिदिया कबूल कर लिया जाए। इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये चाहेंगे कि वो दोजख से निकल जाएं, लेकिन ये हरगिज इसमें से नहीं निकल सकेंगे। इनके लिए दायमी यानी हमेशा रहने वाला अजाब है। चोरी करने वाले मर्द और औरत का हाथ काट दिया करो, ये बदला है इसका जो उन्होंने किया। हाथों की नहीं, एक हाथ की बात है, जरा एक बारीक सा नुकता नोट कर लें। अजाब अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला कुव्वत और हिकमत वाला है। जो शख्स अपने गुनाह के बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो अल्लाह ताला रहमत के साथ इसकी तरफ लौटता है। यकीनन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला, मेहरबानी करने वाला है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ही के लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है? जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ए रसूल, आप इन लोगों के पीछे ना कुढ़िए जो कुफर में सबकत कर रहे हैं, ख्वाब इन मुनाफिकों में से हों जो जुबानी तो ईमान का दावा करते हैं लेकिन हकीकतन इनके दिल ईमान वाले नहीं। और यहूद में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत बातें सुनने के आदी हैं, और इन लोगों के जासूस हैं जो अब तक आपके पास नहीं आए। वो कलिमात किए असली मौके को छोड़कर इन्हें बदल दिया करते थे, यानी चीजों को इधर से उधर कर देते थे। कहते हैं अगर तुम यही हुक्म दिए जाओ तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना दिए जाओ तो अलग थलग रहना, और जिसका खराब करना अल्लाह को मंजूर हो तो आप इसके लिए खुदाई हिदायत में से किसी चीज के मुख्तार नहीं। अल्लाह ताला का इरादा इनके दिलों को पाक करने का नहीं। इनके लिए दुनिया में भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है, और आखिरत में भी इनके लिए बड़ी सख्त सजा है। ये कान लगाकर झूठ के सुनने वाले और जी भर भर कर हराम के खाने वाले हैं। अगर ये तुम्हारे पास आए तो तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह इनके आपस का फैसला करो, ख्वाह इनको टाल दो। अगर तुम इनसे मुंह फेरोगे तो भी ये तुमको हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम फैसला करो तो इनमें अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। यकीनन अदल वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तौरात होते हुए जिसमें अहकाम इलाही हैं तुमको मुनसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद फिर भी जाते हैं। दरअसल ये ईमान वाले ही नहीं, यानी ये लोग ईमान वाले है ही नहीं। बहुत ही यानी कॉम्पैक्ट किस्म की आयात है। तीन आयात है इसमें ईमान से मतलब 35 मायदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो यहाँ से एक तो वसीले की हकीकत मालूम होती है, और दूसरी बात क्या है कि ईमान वाला जब तकवा के साथ अमल करता है तो अल्लाह का कुर्ब पा लेता है। जितना अल्लाह से डरेंगे अल्लाह आपको अपना कुर्ब देगा। फिर 41 मायदा, अगर हमें दूसरों की फिक्र नहीं लगी तो इसका मतलब है कि हमारा अपना ईमान भी मुकम्मल नहीं है। वो कहते हैं ना कि दूसरों की हिदायत की फिक्र ना करना इस बात की दलील है कि अभी आपकी अपनी हिदायत भी मुकम्मल नहीं। फिर मायदा 43, अपना किरदार ऐसा बनाइए कि दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी आप पर एतबार करने लगे। क्या आज है उम्मत मुस्लिमा का ये रवैया? गुनाह के बाद तौबा और इस्लाह अल्लाह की रहमत और मेहरबानी का इजहार है, और इताते इलाही कुर्बत इलाही का जरिया बनती है। फेथ इन एक्शन, आज नेक आमाल करके अपने कल को महफूज बनाना। अधूरी इताअत मुनाफ़त है, इससे बचना है। अल्लाह हमें अपनी इस्लाह की फिक्र लगा दे। आगे रुकू नंबर 7, आयत नंबर 44 से 50, किताबों के नज़ूल का मकसद। बड़ी स्ट्रॉन्ग आयतें आ रही हैं इसके अंदर से, आप खुद ही देखेंगे। अभी तीन किताबों को अल्लाह ने हुज्जत बना के आपके मेरे सामने पेश किया। इन नंजलन तौरात फीही हुदा व नूर, हमने तौरात नाजिल फरमाई जिसमें हिदायत और नूर है। यहूदियों में इसी तौरात के साथ अल्लाह तला के मानने वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम और अहले इल्म और उलमा फैसले करते थे, क्योंकि इन्हें अल्लाह की इस किताब की हिफाजत का हुक्म दिया गया था और वो इस पर इकरारी गवाह थे। अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से ना डरो और सिर्फ मेरा डर रखो। इसको हाईलाइट कीजिएगा। मेरी आयतों को थोड़े से मोल से ना बेचो, और जो लोग अल्लाह की उतारी हुई वही के साथ फैसले ना करें वो पूरे और पुख्ता काफिर हैं। और हमने यहूदियों के जिम्मे तौरात में ये बात मुकर्रर कर दी थी कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दांत और खास जख्मों का भी बदला है। फिर जो शख्स इसको माफ कर दे तो वो इसके लिए कफारा है, और जो लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए के मुताबिक हुक्म ना करें वही जालिम है। इसको हाईलाइट कीजिए। फिर आगे भी ये बात आएगी दूसरी किताब और फिर तीसरी किताब के साथ। अब सेकंड दूसरी बुक इंजील का ही जिक्र है, और हमने इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने इन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करती थी, और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी नेक यानी पारसा लोगों के लिए। और इंजील वालों को भी चाहिए कि अल्लाह ने जो कुछ इंजील में नाजिल फरमाया इसके मुताबिक हुक्म करें, और जो अल्लाह तला के नाजिल करदा से हुक्म ना करें वो बदकार यानी फासिक है। दूसरी हुज्जत आ गई। और हमने इनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाले थे, यानी यहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उनके फासिक होने की बात की है। अब आगे देखिए, अब कुरान की बात आ रही है। आप कुरान का सीक्वेंस फील कर रहे हैं, यानी पूरा पारा आपको निफाज़े शरीयत पे। यहूद ने तौरात नाफिस नहीं की इसीलिए हटा दिए गए, नसारा ने इंजील नाफिस नहीं की तो हटा दिए गए, उम्मते मुस्लिमा की अबारी आ रही है आयत 48 में, और आज हम भी ये नहीं कर रहे। शुक्र कीजिए अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे, वरना हम कब के हटा दिए गए होते। इस शऊर के साथ सुनिएगा। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई, कौन सी? जो इस वक्त मेरे और आपके सामने है, जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के मुताबिक हुक्म कीजिए। इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे ना जाइए। इसको हाईलाइट करें। किताब के निफाज के रस्ते में ख्वाहिशें रुकावट होती हैं। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर अल्लाह को मंजूर होता तो तुम सब को एक उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आसमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सब कर जो अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज बताएगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे थे। अब अल्लाह के नबी के नाते मुझे आपको जो हुक्म है जरा सुनिए। आप इनके मामलात में अल्लाह की नाजिल करदा वही के मुताबिक ही हुक्म किया कीजिए, इनकी ख्वाहिशों की ताबेदारी न कीजिए, और इनसे होशियार रहिए कि कहीं ये आपको अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से इधर उधर ना करें। अगर ये लोग मुंह फेर लें तो यकीन करें कि अल्लाह का इरादा ये है कि इन्हें इनके बाज गुनाहों की सजा ही दे डाले, और अक्सर लोग नाफरमान ही होते हैं। अब जरा सा यहाँ रुकिए, सांस लीजिए। हम सब उसी कटहरे में खड़े हैं जिसमें यहूद और नसारा खड़े थे। हमारा आज वही जुर्म है जो यहूद और नसारा का था, और आज हमारे साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो पिछलों के साथ किया गया। एक काम एक करेगा तो जो नतीजा निकलेगा दूसरा करेगा तो वही निकलेगा। आप अपने सर पे पानी का ग्लास डालेंगे तो आप भी भीगेंगी, मैं भी भीगूंगी अगर मैं ऐसा करूंगी। तो जो उन्होंने किया वही हम कर रहे हैं, जो उनके साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है। अब इन तीनों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट आयत है, ये आयत 50 जरा सुनिए शौर के साथ। अफ हुक्मल जाहिलियत ये भून, क्या ये लोग फिर से जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? यकीन रखने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला से बेहतर फैसले और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की किताबें क्यों नाजिल होती हैं? चूमने के लिए, चाटने के लिए, उसके तावीज बनाने के लिए, उसके डिकेल्स बनाकर दीवारों पे लगाने के लिए, बेटियों की शादियों पे सर के ऊपर से गुजारने के लिए। उम्मत मुस्लिम आज यही समझिए, जबकि अल्लाह तो बताता है ये इंसानों की हिदायत का जरिया होती है। अमली जिंदगी का निज़ाम बदलने के लिए आज इसको हाईलाइट करिए, आपको समझ आ जाएगा कि आज के दौर के करने के काम क्या है, उलमा के भी और सियासी रहनुमाओं के भी और मेरे आपके भी। ये किताबें जाहिर और बातिन को संवारने के लिए आती हैं, जिंदगी गुजारने के अहकाम सिखाने के लिए आती हैं, और इंसान को अंधेरों से निकालने के लिए आती हैं। तो मेरे आपके करने का काम अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले कीजिए, भलाइयों में सबकत करनी है। और मैं तो उस वक्त का सोच के ना कांप जाती हूँ, सच बताऊं, जिस वक्त गैरों ने मुसलमान हो जाना है और हम मुसलमानों की नस्लों ने कुफर पे आ जाना है। लिख के रख लें ये जुमले, नबी की हदीस बता रही है, मैं नहीं बोलती। जिस दिन इन गोरों ने मुसलमान होना है हमें कहना है वो जाहिल हो। ये छुपा के रखा हुआ था तुमने, क्यों अपनी बीवियों के कपड़े उतारते थे, उनके हिजाब उतारते थे, क्यों अपनी बेटियों को तुमने ऐसे खुली गाय भैंसों की तरह सड़कों पे छोड़ा हुआ था? ये तुम जाहिलों ने सूद से हमें रोका क्यों नहीं? ये तुम लोगों ने हमें शराब से रोका क्यों नहीं? ये हो रहा है आज भी। जापान जीरो इंटरेस्ट फ्री मुल्क है, कई जगह नेगेटिव पे चला गया। लोग कहते हैं दौरे जाहिलियत का मुबल्लिग साइंस है, मैं कहती हूँ दौरे जाहिलियत का मुबल्लिग आज की इकोनॉमिकल कंडीशन है। लिख के रख लें, आज 24 है, मुझे नहीं पता ये वादा कब पूरा होगा, ये दुनिया सूद फ्री होगी, लेकिन ये हम मुसलमानों की तबलीग से नहीं होनी, ये खुद उसके जो रिपरकशंस और वो उसकी जो सीक्वेंसेस और जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से होंगे। छोड़ दिया इन्होंने, नॉर्वे में कई बैंक ऐसे शुरू हो गए कि वो सूद फ्री आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद डूब रहे हैं, क्योंकि सूद एक छूत है और सूद का पानी लग जाए तो चीज़ें खराब। इन गोरों ने, गोरों से मेरा समझ रही है, प्यार से कह रही हूँ, जब गैर मुस्लिमों ने मुसलमान होना है हमें जाहिल कहना है, जो अल्लाह ने आपको कहा फा हुक्मल जाहिलियती, ओ जाहिलो, 4 दफ़ा कुरान में जाहिलियत का लफ्ज़ है, ये पहली दफ़ा है, आगे कहीं शुरू में आ जाएगा पारे के तो वहाँ बताऊंगी आपको कि ये क्या होती है। आज हम जाहिल हैं, मा कबल अल इस्लाम उल जाहिलिया। आगे देखिए रुकू नंबर 8 है, आयत 51-56। दुश्मन इस्लाम से दोस्ती मना, और आपके रब की प्यार भरी मोहब्बत भरी पुकार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया, इस पुकार को कानों पे लीजिए तो आपको अल्लाह की बहुत सारी बातें समझ आएंगी। ईमान वालों, तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये तो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करेगा वो बेशक उन्हीं में से है। जालिमों को अल्लाह ताला हरगिज़ राह रास्त नहीं दिखाता। हमने अपनी औलादें दे दी इनको, हमने अपने माल दे दिए, सोच दे दी, अपना कॉन्फिडेंस इनको दे दिया, हमने बुढ़ापा ले लिया, हड्डियां घुल गई जॉबें कर करके, टैक्स दे दे के, सब दे दिला के हमने क्या लिया? किसी ने छोड़ते हुए इन मुल्कों को हसरत से कहा था सब कुछ तुम्हें देके जा रहा हूँ, ये जो दो छोटे बच गए इनको ले जाऊं कहीं, तुम ये भी ना ले लो है मुल्को मेरा, और कमाएं और खाएं और बड़े घर बनाएं और अच्छे सोफे लाएं, लेकिन जब अकेला उन सोफों पे बैठना पड़ता है तो फूक उठती है, उन घरों की दीवारों में से आवाज आती है, अफा हुक्मल जाहिलियत या भगवान अल्हा को मुतकासुर की आवाज आती होगी कहीं, और कमा लो और खा लो, कितना खाओगे, आज पैसा है सुकून नहीं है, घर है तन्हाई है, तो अल्लाह ताला अब आगे उनके निफाक की बातें कर रहे हैं कि क्यों ये लोग नहीं माने, आप देखेंगे जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर इनमें घुस रहे हैं, जरा से इसको हाईलाइट करें और होमवर्क के तौर पे इस पे बाद में गौर कीजिएगा, इस वक्त टाइम नहीं है गौर का, घुस नहीं रहे हम उनमें, और कहते हैं कि हमें खतरा है, देखिए जाके पनाह भी लेते हैं तो औजु बिल्ला तो कहते हैं लेकिन असल में औजु अल्लाह के लफ्ज को कहीं और बदल लीजिए, उनकी पनाहें मांगते हैं कि हम हमें असाइलम दे दो, हमें मुसलमानों से खतरा, और वो भी ऐसी औलादों ऐसी नस्लों को पकड़ पकड़ कर मीडिया पे आम करते हैं, पिछले 2-3 साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ था उस मुल्क में जहाँ से मैं आई हूँ, एक मुसलमान लड़की ने खुद को अपने आप को होमो कहती हूँ, क्या क्या तौर तरीके करके उसको मादर साथ नंगा करके जिस्म पे कुछ टैटूज के साथ प्राइवेट पार्ट छुपाए, पूरे हेलीकॉप्टर्स की उसको देकर सिक्योरिटी उसको शहर का बिल्कुल जिसको आप डाउनटाउन कहते हैं वहां लाके खड़ा किया, क्योंकि उसने कहा कि मुझे खतरा है जब मेरी बात सुनेंगे तो मुसलमान मुझे मार देंगे, उन्होंने उस बच्ची को कोई इज्जत दी, क्या कहूँ मैं आपको, ये एक नहीं कई कहानी ऐसी, हम घुसे उनके अंदर और क्या कहते हैं हमें खतरा है, देखिए ये कुरान लगता है पुराना, आज मुसलमान नहीं कहते, ना ना बेटा नहीं मुसलमान नहीं बनना, खतरा होगा इन जैसे बन जाओ ताकि तुम्हें कुछ ना कहे, तो फिर कुछ नहीं कह रहे वो आपको, ऐसा ना हो कि कोई हादसा जो हम पर पड़ जाए, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज ले आए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर बेतरह से नादिम होने लगेंगे, और वो वक्त आएगा और ईमानदार कहेंगे क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, इनके अमाल गारत हुए और ये नाकाम हो गए, फिर पुकारे प्यार की अल्लाह आपसे मायूस नहीं है मुझसे मायूस नहीं है, अल्लाह पुकारता है या अय्युल्लज़ीना मनु मन यरतद्द मिनकुम अन दीनिही, यकीन करें रोने को दिल करता है इस आयत को पढ़ के, तुम अल्लाह की मजबूरी नहीं हो, जाओ सेल्फ सफिशेंट हो तो जाओ, या फिर तुम जिनकी गोदों में घुसते हो जिनकी पनाहों में जाते हो शौक से जाओ, तुम रूठे हम छूटे इस आयत का टाइटल लिख लीजिए, क्या पुकार है जाते हो तो जाओ हम नहीं तुम्हें रोकेंगे, ऐ ईमान वालो तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए है कोई अभी फिरने में कसर, पहले तो कहते थे नहीं नहीं कलमा तो पढ़ते हैं ना, अब तो मुंह पे बच्चा कहता मैं कलमा नहीं पढ़ता, बच्ची भी कहती बूढ़े भी कह रहे हैं अब, अल्लाह कहते तो फिर जाए, तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी, वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर और सख्त और तेज होंगे कुफार पर, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करेंगे, दुआ कीजिए हमें लोगों की बातों का डर खत्म हो जाए, लोग क्या कहेंगे बातें करेंगे ये होगा वो होगा, ये है अल्लाह ताला का फजल जिसे चाहे दे, अल्लाह ताला बड़ी वसत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है, मुसलमानों अब कान खुलवाए जा रहे हैं, कान पकड़ो खोलो कान, मुसलमानों तुम्हारा दोस्त तो खुद अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं, तुम बता नहीं किन को अपने दोस्त समझते हो, और वो कौन से ईमान वाले जिनके नाम है मोमिन, नहीं वो जो नमाजों की पाबंदी करते और जकात अदा करते और रुकू खुशू खुदू करने वाले, और जो शख्स अल्लाह ताला से और उसके रसूल से और मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह ताला की जमात ही गालिब रहेगी, 5 बार आपके रब ने आपको इस रुकू में पुकारा, माईदा 51, क्या आपको मैसेज दिया जिंदगी में अपने मेयार दुरुस्त कर लें ताकि ईमान की मौत नसीब हो, ये बड़ी खतरनाक बात है, आज तो चल ही रहा है ना गुजारा छुपे बैठे हैं, वहां तो खबर लग जानी है, वम ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, वहां नहीं हम छुपेंगे ईमान की कह लीजिए ओट लेकर हम नहीं बचेंगे, वहां खोखला ईमान दिख के सामने आएगा लोगों को, और 53 मायदा का पैगाम क्या है कि अल्लाह के नजदीक बुरी नीयत वाले नेक अमाल भी कबूल नहीं होते, 54 मायदा हर नेमत जिम्मेदारी है, जो नेमत का हक अदा ना करे वो हटा दिया जाता है, सोच के नखरा करिए सोच के छुट्टी करें, मैं अपने आप को कह रही हूँ मैं सोच के अपने इस काम को छोड़ूं, आज मैं हटूंगी कल मेरी जगह आप यहाँ मेरे से अच्छा बंदा लाएंगे ये मेरा यकीन है, अगर कोई जिम्मेदारी मिल गई शुक्र कीजिए, कोई काम मिल गया शुक्र कीजिए, कोई चीज अल्लाह के रास्ते में लग गई नेमत का हक अदा कीजिए, इससे पहले कि अल्लाह कहता है कि तुम रूठे तो हम झूठे। और आयत 55, जिससे रब राजी उससे सब राजी। माईदा 56, जो गुमराहों से कटता है अल्लाह उसे सालेहीन की सोहबत अता करता है। इन आयतों की तफसीर जरूर सुनिएगा जहां से ऐप के ऊपर मौजूद है। फेथ इन एक्शन, अहले ईमान के लिए नरम रवैया अख्तियार करना है, दोस्ती सोच समझ कर करनी है क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है, अल्लाह रसूल और अहले ईमान को दोस्त रखना है। और आगे रुकू नंबर 9, आयत 57 से 66, दीन को मजाक बनाने वाले अल्लाह के दीन के दुश्मन हैं। और यहाँ फिर एक खूबसूरत पुकार आपको ईमान वाली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम खुज़ुआ। ऐ ईमान वालो, मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं। कितना मजाक उड़ाते हैं गैर मुस्लिम हमारे दीन का, कोई चोट नहीं पड़ती हमारे दिलों में। हाँ वो उनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए या कुफार हों, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डरते रहो, और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो इसे हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इस वास्ते कि ये बेअक्ल लोग हैं। आप कह दीजिए कि यहूदो नसारा, तुम हमसे सिर्फ इसीलिए दुश्मनियां कर रहे हो कि हम अल्लाह ताला पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है, जो कुछ इससे पहले उतारा के इस पर ईमान लाए हैं, और इसलिए भी कि तुम में से अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं कि इससे भी ज्यादा बुरे अजर पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है, वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और उस पर गुस्सा हुआ, और इनमें से बाज को बंदर और सुअर बना दिया गया, और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए ही आए थे और इसी कुफर के साथ ही गए भी, और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह खूब जानता है। आप देखेंगे इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और माले हराम खाने की तरफ लपक रहे हैं। सच है कि झूठ? 100% सच है। माल मिल जाए जहां से मिल जाए, जो कुछ ये कर रहे हैं नहायत बुरे काम है। इन्हें इनके आबिदो आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। ये है आयत, मुझे है हुक्मे ऐसा, लिख के रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल के उलमा में जो सबसे पहली खराबी आई थी वो ये थी कि वो इनको, यानी बनी इसराइल में जो पहली खराबी थी कि उनके उलमा उनको बुरी बात से रोकते, लेकिन जब लोग उनकी बात पे रुकते ना तो अगले दिन फिर उनके साथ उन्हीं महफिलों में खाने पीने लग जाते। ये है मुझे है हुक्मे ऐसा, रोटी पानी बंद हो जाता है जब लोगों पे तनकीद करते हैं। और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तआला के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बंधे हुए हैं और इनके इस कौल की वजह से इन पर लानत की गई, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है और जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से उतारा जाता है वो इनमें से अक्सर को तो खुश खुसरकशी और कुफर में बढ़ा देता है। और हमने इनमें आपस ही में क्यामत तक के लिए अदावत और बुगस डाल दिया है, वो जब कभी लड़ाई की आग को भड़काना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उसे बुझा देता है। ये मुल्क भर में शर और फसाद मचाते फिरते हैं और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता, और अगर ये अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम इनकी तमाम बुराइयां माफ फरमा देते और जरूर इन्हें राहत और आराम की जन्नतों में ले जाते, और अगर ये लोग तौरात और इंजील और इनकी जानिब जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल फरमाया गया है इनके पूरे पाबंद रहते तो ये लोग अपने ऊपर से और नीचे से रोजियां पाते। इसको हाईलाइट करके रोइए, हमने खुद अल्लाह के रिस्क को खत्म किया हुआ है। आज अगर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई है, तो उसकी वजह इस आयत में लिखी हुई है। लोग इसी का वजीफा बना के पढ़ना शुरू कर देंगे कि अच्छा इससे महंगाई खत्म हो जाएगी। फरमाया, एक जमात तो इनमें से दरमियाने रवैये वाली है, बाकी इनमें से बहुत से लोगों के अमाल बुरे हैं। क्या पता चला? 3 आयतें इस रुकू में ईमान से मुतल्लिक, 57 मायदा, पैगाम क्या है? दीन का मजाक उड़ाने वालों से दूर रहना। 59, हासिद लोगों दूसरों की नेमत से फायदा उठाने की बजाय उस नेमत के छिनने की दुआ करता है। और 61 मायदा, हिदायत हासिल करने की बुनियादी शर्त खुलूस है। फेथ इन एक्शन, दीन का और दीन वालों का मजाक नहीं उड़ाना, दीन से मुतल्लिक तमस्खराना बातों को फैलाने से बचाना। रुकू नंबर 10, आयत नंबर 67 से 77, नहीं अनिल मुनकर से गुरेज, गजबे इलाही का सबब बनता है, यानी जब दीन वाले बुरी बात से रोकना छोड़ते हैं तो अल्लाह का गजब आता है। या युहर रसूल बल्लिग माउनजिला इलैक, ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है पहुंचा दीजिए, अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अल्लाह की रिसालत अदा नहीं की और आपको अल्लाह ताला दूसरे लोगों से बचा लेगा, बेशक अल्लाह ताला काफिर लोगों को हिदायत नहीं देता। आप कह दीजिए कि अहले किताब तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं जब तक कि तौरात और इंजील को और जो कुछ तुम्हारी तरफ रब की तरफ से उतारा गया है कायम न करो। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से उतरा है वो इनमें से बहुत सारों को शरारत और इनकार में और भी बढ़ाएगा, तो आप इन लोगों पर यानी इन कुफार पर गमगीन न हो। मुसलमान, यहूदी, सितारा परस्त और नसरानी कोई भी हो, जो भी अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान लाए वो और नेक अमल करे वो महज बेखौफ रहेगा और बिल्कुल बेगम रहेगा। यही आयत सूरह बकरा में भी आई थी। हमने बिल यकीन बनी इसराइल से अहदों पे मान लिया और इनकी तरफ रसूलों को भेजा, जब कभी रसूल इनके पास वो अहकाम लेकर आए जो इनकी अपनी मर्जी के खिलाफ थे तो उन्होंने एक जमात को झुटलाया और एक जमात को कत्ल कर डाला और समझ बैठे कि कोई पकड़ना होगी, यानी भोले बन गए, पसंदे बहरे बन बैठे। फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की, इसके बाद इनमें से भी अक्सर अंधे बहरे हो गए और अल्लाह ताला इनके अमाल से बखूबी वाकिफ है। बेशक वो लोग काफिर हो गए। इसको हाईलाइट कीजिएगा, कितनी बड़ी दलील है नसारा के अकायद के रद के बारे में। कौन से लोग? जिनका कॉल ये है कि मसीह ने मरियम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह ने इनसे कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सब का रब है। यकीन मानो जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ताला ने इस पर जन्नत हराम कर दी है, इसका ठिकाना जहन्नुम ही है और गुनाहगारों की मदद करने वाला कोई नहीं। वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में का तीसरा है। ट्रिनिटी के अकीदे वालों के लिए ये आयत का नंबर नोट कीजिए। दरअसल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे इन्हें अलमनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह ताला की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तगफार नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। मसीह ने मरियम सिवा पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इनकी वालिदा एक रास्तबाज औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे। आप देखिए कि किस तरह हम इनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए किस तरह से वो फिरे जाते हैं। खाना खाना गुनाह नहीं है, अल्लाह ने इन आयात में बता दिया। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक ना नफे के? अल्लाह ही खूब सुनने और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए कि अहले किताब अपने दीन के मामले में नाहक गलूब ना करो और ज्यादती ना करो, इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुत सारों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए। क्या क्या सोने के पानी से लिखने वाले जेम्स हैं। एक आयत ईमान से मुतल्लिक इस रुकू में थी 69, उसका मजमून क्या है कि जन्नत नस्बतों से नहीं आमाल से मिलेगी। अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ना करना दुआओं की कबूलियत के रास्ते की रुकावट है। फेथ इन एक्शन, गुमराह कुन ख्यालात से बचना है। खुद साख्ता माबूद नहीं बनाने, दीन इलाही को सारी इंसानियत तक पहुंचाना है, बिदात से बचना है। पर कैसे बचना है ये हमें नहीं पता क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। अब आखिरी आयात है पारे की 78 से 82। यहूद मुस्लिम दुश्मनी में शदीद, लुइन अल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के कुफार पर हजरत दाऊद और हजरत ईसा इब्ने मरियम की जुबानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे, आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते नहीं थे। इसको हर वो बंदा नोट करे जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया। जो कुछ भी ये करते थे यकीनन वो बहुत बुरा था। इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो कुफार से दोस्तियां करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेजा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला इनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। अगर इन्हें अल्लाह ताला पर और नबी पर जो कुछ नाजिल किया गया इस पर ईमान होता तो ये कुफार से दोस्तियां ना करते, लेकिन इनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। कोई एक लफ्ज की भी तफसीर की जरूरत है ही ना आयत की, हर बात खुली रोजे रोशन की तरह। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूद और मुशरिकों को पाएंगे, और ईमान वालों से सबसे ज्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन उन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। क्रिश्चियंस की तारीफ हो रही है इस आयत में। ये इसलिए कि इनमें से अक्सर उलमा और इबादत के लिए गोशा नशीन अफराद पाए जाते हैं, और इस वजह से ये कि वो तकबर नहीं करते। इन आखिरी आयतों में फिर दो आयतें ईमान से मतलब 81 मायदा, मोमिन का झुकाव ईमान वालों की तरफ होता है, और 82 मुसलमानों के दुश्मन कौन और दोस्त कौन, इसको समझना है। सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और मोमिनीन को अपना रफीक बनाना है। आज इसके साथ जो हम ईमान की शाखें करने वाले हैं, अल्लाह करे कि मैं और आप उस पर अमल करें। तो शाख नंबर 11, खौफे खुदा का वाजिब होना, इस पर ईमान रखिए। कायनात का खालिक मालिक राजिक अल्लाह, मर्जी अल्लाह की चलेगी, बेनियाज अल्लाह है, किसी का मोहताज नहीं, तो खौफ और डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। वो खुद कहता है मायदा 44, आज ही पढ़ा हमने, फला तखशवन्ना सबखशौनी, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। और हदीस 803 है शाबुल ईमान की, अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। बैलेंस रखना चाहिए, ना बेखौफ रहें और ना हर वक्त खौफ के नाम पर कुछ भी ना करें। फायदा क्या होगा खौफ खुदा पैदा करने का, सूरत नूर 52 से पता चलेगा। वमन युति अल्लाह व रसूलहु व यख्शा अल्लाह व यत्तकी फौलाइका हुमुल फाइसून, कामयाब वही है जो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी करें और अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें। और तिर्मिजी की रिवायत है 1639, अल्लाह ने दो आंखों को आग से जहन्नुम से आजाद कर दिया, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोई और दूसरी जो अल्लाह के दीन की सरहदों की हिफाजत में जागी। अल्लाह हमें अपना खौफ दे दे। और शाख नंबर 12, अल्लाह की तरफ से उम्मीद को वाजिब करना, वही जो बातें सुनिए उसको उलट, ना तो ही बिल्कुल ही ना उम्मीद और ना बिल्कुल बेउम्मीद, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, उसकी रहमत वसी है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें, खैर और भलाई की दुआएं मांगें। और सबसे ज्यादा पुर उम्मीद आयत जुमर 53, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीया इन्नहू वल गफूरुर रहीम। और जुमर 9, अम्मन हुवा क़ानितुना आना लैली साजिदन साजिदा वक़ाइमा, क्या उस शख्स की रविश से बेहतर किसी की रविश है जो खुद मतीय फरमान भी हो यानी रुबीडियंट हो, रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता हो और आखिरत से डरता और अपने रब की रहमत की उम्मीद लगाता हो। और बुखारी की रवायत 6479 से पता चलता है कि वो 7 किस्म के लोग जिनको क्यामत के दिन अर्श इलाही का साया मिलेगा, उसमें एक वो है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह गए। तो ये था आज का पारा। आज के मजमून की रोशनी से जो शेर है, वक्ते फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। और इसी नूरे तौहीद के अंदर फरी शरीयत का निफास भी आता है। तो इस थीम के साथ अगर इस शेर को ऐसे पढ़ दूँ, वक्ते फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, पूरी दुनिया में शरीयत का निफास अभी बाकी है, अभी तुम्हारे जिस्मों पे भी नहीं आया। ये दुआ मांगते हुए उठिएगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, मुस्लिम की रिवायत है 2484, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत तकवा और इफ्फत व तवंगरी का सवाल करती हूँ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।